श्री नित्यानंद प्रभु जो सदा सर्वदा अक्रोध और परमानंद है, अर्थात क्रोधहीन है और सदा सर्वदा दिव्यानंद में मग्न रहते हैं। तो ऐसे जो नित्यानंद प्रभु ये नगर में भ्रमण कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था नित्यानंद और हरिदास को कि हर घर पर जाकर सभी से हरि नाम महामंत्र का उच्चारण करने के लिए बोलना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ये प्रथम प्रचारक है जो नाम प्रचार में निकले थे चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से। तो वही नित्यानंद प्रभु अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ा है। तो अभिमान से शून्य है, उनमें कोई गर्व या अहंकार नहीं है, क्योंकि जब कोई प्रचार में जाता है और उसके मन में यदि गर्व या अहंकार होता है तो दूसरों को प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि प्रचार करने के लिए लोगों से भिक्षा मांगनी पड़ती है, जिस प्रकार नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर कर रहे थे। ये यही भिक्षा मांग रहे थे कि आप कृपा करके भगवान का दिव्य नाम उच्चारण कीजिए, हरे कृष्ण बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भिक्षा मांगना ये बहुत कठिन है, क्योंकि सभी लोग भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए आग्रह प्रकाश नहीं करते, क्योंकि संसार में बहुत सारे नास्तिक लोग हैं, उनको भगवान का नाम ग्रहण करने के लिए कहा जाए तो गाली देना शुरू करेंगे या कोई मारने दौड़ेगा, ऐसा लोग करते हैं। और जिनका भगवान के ऊपर उतना विश्वास नहीं है, भौतिक अभिवृद्धि में विश्वास रखते हैं, ये लोग भी भगवान का नाम ग्रहण करना नहीं चाहते। और ऐसे भी लोग हैं जो भगवान का नाम तो ग्रहण करते नहीं, भगवान का नाम श्रवण करना भी नहीं चाहते, ऐसे पापी लोग हैं। हम लोग जब नगर संकीर्तन में जाते हैं तो हमारे नगर संकीर्तन का एक उद्देश्य होता है, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से प्रश्न किया था कि हरिदास ये संसार के लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा था कि आपका जो दिव्य नाम कीर्तन करने मात्र से संसार के लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने पुनः प्रश्न किया कि ऐसे बहुत सारे लोग जो भगवान का दिव्य नाम कीर्तन करना नहीं चाहते और ऐसे भी जीव हैं जो स्थावर जंगम जीव हैं, पशु पक्षी हैं, वृक्ष लता हैं, ये भी भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर सकते, तो इन जीवों का कैसे उद्धार होगा। तो हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया था कि ये लोग आपका नाम कीर्तन नहीं कर सकते किंतु आपका नाम श्रवण कर सकते हैं। इसलिए भक्त लोग जब उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जब इस प्रकार उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो ये पशु पक्षी वृक्ष लता जितने भी जीव हैं स्थावर जंगम, ये आपका दिव्य नाम श्रवण करके ये उद्धार हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे नगर संकीर्तन का यही उद्देश्य है कि जो लोग भगवान का नाम कीर्तन नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते हैं, कम से कम हमारे नाम संकीर्तन को श्रवण कर सकते हैं और उनका उद्धार हो सकता है। तब नित्यानंद प्रभु को श्री चैतन्य महाप्रभु ने भेजा है। श्री चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन में निकले और प्रति घरे घरे गया, करे भिक्षा अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गया। जो अधम पतित जीव हैं, जो भगवान का नाम संकीर्तन नहीं करते हैं, तो उनके द्वार पर जाकर श्री नित्यानंद प्रभु ये महामंत्र को प्रदान कर रहे हैं, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, कि आप भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण कीजिए, भगवान कृष्ण का भजन कीजिए और भगवान कृष्ण की शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, जैसे भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में उपदेश दिया है। तो भगवद गीता के उपदेश को जीवन में ग्रहण करना ये आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने इसलिए गीता का उपदेश दिया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गीता केवल पढ़ने के लिए है, पाठ करने के लिए, तो प्रतिदिन वो पाठ करते हैं पुण्य कमाने के लिए, किंतु भगवद गीता का आचरण अपने जीवन में नहीं करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने ये उपदेश दिया है आचरण करने के लिए और जीवों का उद्धार के लिए। जीव कैसे संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं, उसके लिए भगवान कृष्ण ने ये गीता का उपदेश प्रदान किया है। जब हम भगवद गीता के उपदेश को अपने जीवन में लागू करेंगे, आचरण करेंगे, तो हमारा उद्धार हो सकता है। तो नित्यानंद प्रभु ये नगर नगर में भ्रमण करते हुए ये हरिनाम का वितरण कर रहे हैं। पतित और अधम जितने जीव हैं उनको ये हरिनाम बिलाया, ये फ्री में बांट रहे हैं। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है भगवान का नाम कीर्तन करने के लिए। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम भंडार के रक्षक है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान कृष्ण थे और स्वयं बलराम श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए थे, और उनका उद्देश्य था कलयुग में प्रेम नाम संकीर्तन का वितरण करना जिससे कि जीवों का उद्धार होगा। तो नाम के साथ वो प्रेम प्रदान कर रहे थे जो प्रेम दूसरे किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था। अनर्पित चरिंग चीरा करुण या अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्जवल रसन स्वभक्ति श्रियम। तो अनर्पित चरिंग चीरा, बहु काल से ये अर्पित नहीं हुआ था। भगवान कृष्ण का जो प्रेम है ये अर्पित नहीं हुआ था, और चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए इस कृष्ण प्रेम को नाम के माध्यम से अर्पित करने के लिए, नाम प्रेम प्रदान करने के लिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष वरदान है कलयुग के लोगों के लिए। केवल भगवान के नाम उच्चारण मात्र से व्यक्ति कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो सकता है। तो नित्यानंद प्रभु जो कृष्ण प्रेम के भंडार रक्षक थे, चैतन्य महाप्रभु ने उनके माध्यम से इस कृष्ण प्रेम का वितरण सारे जगत में किया है। तो वही नित्यानंद प्रभु नगर में भ्रमण करते हुए ये हरिनाम को फ्री में बांट रहे हैं। तो इस प्रकार जारे देखे तारे कहे दंते तृणधरी। तो कोई जाकर अभिमान पूर्वक या गर्व पूर्वक किसी से बोलेगा कि आप हरिनाम का उच्चारण कीजिए तो व्यक्ति नहीं सुन सकता है, किंतु नित्यानंद प्रभु दैन्य भाव से लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, ये आदेश नहीं दे रहे हैं, जबकि वो आदेश दे सकते थे क्योंकि स्वयं भगवान है, ईश्वर है, किंतु वो आदेश नहीं दे रहे हैं, वो अनुरोध कर रहे हैं। क्योंकि जीव की स्वतंत्रता है, भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है जीव को, लघु स्वतंत्रता। यदि भगवान किसको बाध्य करना चाहें तो जीव भगवान के आदेश का अन्यथा नहीं कर सकता, उसकी अवमानना नहीं कर सकता, किंतु भगवान किससे बाध्य नहीं करना चाहते। यदि भगवान चाहें तो सभी को भक्त बना सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के अधीन हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, किंतु भगवान हमें बाध्य करना नहीं चाहते, क्योंकि जहाँ बाध्यता होती है वहाँ प्रेम नहीं होता है। हम डर के मारे हो सकता है कि भगवान की भक्ति करने लगेंगे, किंतु वस्तुतः हृदय से प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है जीव को कि जीव स्वतंत्र होकर यदि वह चाहे भगवान की भक्ति कर सकता है। तो इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु वो बाध्य नहीं कर रहे हैं लोगों को कि तुम सभी लोग भगवान का नाम उच्चारण करो, ऐसा नहीं कर रहे। दंते तृणधरी, वो तिनका दांत में पकड़े हुए, दांत में तिनका पकड़े, ये अत्यंत दैन्य भाव का प्रदर्शन इससे होता है। जब दांत में तिनका पकड़ करके कोई किसी के पास जाता है, ये अत्यंत दैन्य भाव का प्रदर्शन होता है। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु रामकेली में पहुंचे थे, उस समय रूप सनातन जो उस समय नवाब हुसैन शाह के दरबार में मंत्री थे, उनकी बहुत बड़ी पदवी थी, किंतु चैतन्य महाप्रभु के सामने वो कैसे आए, दांत में तिनका पकड़ करके दैन्य भाव प्रदर्शन करते हुए चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए। ये दैन्य भाव का प्रदर्शन है। तो नित्यानंद प्रभु यदि भी स्वयं ईश्वर है, किंतु जीवों को ये अनुरोध करने के लिए, विनती करने के लिए दांत में तिनके पकड़े हुए सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप कृपा करके भगवान का नाम उच्चारण कीजिए, भगवान का नाम ग्रहण कीजिए, हरे कृष्ण बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जारे देखे तारे कहे दंते तृणधरी, हमें के किनिया बोलो गौर हरी। भज गौर हरी। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि आप लोग गौरांग महाप्रभु का भजन कीजिए, जो भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं उनका भक्त बनिए, उनका भजन कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका नाम ग्रहण कीजिए। और यदि आप लोग चैतन्य महाप्रभु का नाम ग्रहण करेंगे, उनके चरणों में शरण ग्रहण करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो आप लोग मुझे खरीद सकते हैं। ये नित्यानंद प्रभु अपने को दे रहे हैं, प्रदान करने का मार्ग बता रहे हैं कि हम नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त हो सकते हैं। तो जिस प्रकार व्यक्ति किसी चीज को खरीद लेता है तो वो वस्तु उसकी हो जाती है, उस पर दूसरे किसी का अधिकार नहीं होता, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि आप गौरांग का भजन कीजिए तब मुझे खरीद सकते हैं, मैं आपका हो जाएंगे और किसी का नहीं। अपने को दे रहे हैं नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जो गुरु तत्व है, आचार्य लीला कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से जिस प्रकार कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती, गुरुदेव की कृपा के बिना कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती है, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती। चैतन्य महाप्रभु की कृपा नित्यानंद प्रभु की कृपा पर निर्भर करती है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, आचार्य, जिस प्रकार बलराम गुरु तत्व है। और बलराम क्या करते हैं, कृष्ण की सेवा की शिक्षा देते हैं। बलराम जी स्वयं कृष्ण की सेवा करते हैं और दूसरों को वही शिक्षा देते हैं। यदि भी कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, फिर भी बलराम जी कृष्ण के सेवा करते हुए अपने को कृष्ण की सेवक मानते हैं। कृष्ण के यद्यपि वो स्वयं प्रभु हैं, किंतु सेवक के रूप में, और गुरु का कार्य भी वही है कि गुरु अपने शिष्यों को भगवान की सेवा की शिक्षा प्रदान करता है, स्वयं सेवा करके आचार्य के रूप में आदर्श प्रस्तुत करता है शिष्यों के लिए, दूसरों के लिए। तो बलराम जी वही कर रहे हैं और नित्यानंद प्रभु भी वही कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु का भजन कीजिए, उनका भक्त बनिए, उनकी शरण में जाइए, उनका नाम कीर्तन कीजिए, तो आप मुझे खरीद सकते हो, मैं आपका हो जाऊं, आप चाहें जो करना चाहें मेरे साथ कर सकते हैं। नित्यानंद प्रभु अपने को बेच रहे हैं, इतने कृपामय है। तो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार जब लोगों से निवेदन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का भजन करो, चैतन्य प्रभु का नाम ग्रहण करो और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को ग्रहण करो अपने जीवन में, तो इस प्रकार द्वार द्वार जाकर नित्यानंद प्रभु सभी से यह अनुरोध कर रहे हैं नवद्वीप में। एतावली नित्यानंद भूमे गड़ी जाए, सोनार पर्वत जन धुलाते लुटा है। यह कहकर नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेम में विहोल होकर धूलि में लुटते हैं। तो ये कृष्ण प्रेम का लक्षण है, जब हृदय में कृष्ण प्रेम का उद्रेक होता है तो उस समय शरीर में कंपन होता है, शरीर पुलकित होता है, शरीर में रोमांच उत्पन्न होता है और चक्षु से अश्रु की धाराएं प्रवाहित होती है, प्रेमाश्रु की धाराएं। और उस समय शरीर ज्ञान नहीं रहता है, तो शरीर ज्ञान नहीं रहने के कारण व्यक्ति धूलि में लुटता रहता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी ऐसा प्रेम प्रदर्शित कर रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु धूलि में लुट रहे हैं कृष्ण प्रेम में विहोल होकर, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई सोने का पर्वत ये धूलि में लुट रहा है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का जो शरीर था ये विशाल प्रकांड शरीर था और गौरवर्ण का शरीर था। नित्यानंद प्रभु बहुत सुंदर लगते थे, तो जब वो धूलि में लौट रहे थे ऐसा लग रहा था कि कोई सोने का पर्वत धूलि में लौट रहा है। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु जो कि परम बदान्य अवतार है, जो लोगों से हरिनाम लुटा रहे, ऐसे अवतार के प्रति जिसकी रति नहीं है, प्रेम नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो लोचन दास ठाकुर कहते हैं वो पापी पुरुष है। जो ऐसे नित्यानंद प्रभु के प्रति जिसकी आसक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जगत के कल्याण के लिए वो दांत में तिनका लेकर सभी से अनुरोध कर रहे हैं। थोड़ा चैतन्य महाप्रभु का नाम ग्रहण करो, भगवान का नाम ग्रहण करो और उनकी सेवा करो। तो लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि जो पापी ऐसे नित्यानंद के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं है, वो पापी संसार में जन्म लेता है फिर मरता है, जन्म लेता है मरता है, इतना ही होता है उसके लिए, और वो कुछ प्राप्त नहीं करता है और संसार का कष्ट भोग करता रहता है। एलो आर गेल, वो पापी यहाँ उसने जन्म लिया और फिर चला गया, फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ, फिर जन्म लिया, फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जो नित्यानंद प्रभु हैं, आज उनकी पावन आविर्भाव तिथि है। आज के दिन श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ था राढ़ देश में एक चक्र नामक ग्राम में। राढ़ देश उसको कहा जाता है जहां गंगा प्रवाहित नहीं होती है। जिस प्रकार पांडवगण जब वनवास में थे तो उस समय वो बहुत स्थानों पर गए थे पांडवगण, और क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्त थे पांडवगण, तो जिस स्थान पर गए वो स्थान पवित्र तीर्थ में परिणत हो गया था पांडवों के आगमन पर, और सर्व शुभ में भर गया था वो स्थान। और जिस स्थान पर पांडवगण नहीं गए थे उसको अपांडवा राज्य कहा जाता है, जिस राज्य में पांडवगण नहीं गए, अर्थात तो उतना शुभ स्थान नहीं है। उसी प्रकार जिस भूमि पर गंगा प्रवाहित नहीं होती है उसको राढ़ देश कहा गया, अर्थात वहां से अशुभ स्थान माना गया है, किंतु पांडवगण गए थे इस राढ़ देश में। ये जो एक चक्र ग्राम है जहां नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ था, उसी ग्राम में पांडवगण रह रहे थे। तो वहां पर वो स्थान भी अभी भी है जहां पांडवगण निवास करते थे। तो राढ़ देश में जब नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ तो वहां वो देश सर्व शुभंकर हो गया, और चारों ओर आनंद उत्साह से भर गया वो स्थान। तो नित्यानंद प्रभु हड़ाई पंडित, ये मैथिली ब्राह्मण थे हड़ाई पंडित, और उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती देवी। तो उनके गर्भ से नित्यानंद प्रभु आविर्भूत हुए, और हड़ाई पंडित के ये ज्येष्ठ संतान थे नित्यानंद प्रभु, और बहुत सुंदर थे। तो नित्यानंद प्रभु को देखकर हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी वो प्रेम से विह्वल हो रही थी, दोनों अत्यंत आनंदित थे कि ऐसा सुंदर पुत्र रत्न उनको प्राप्त हुआ है। यद्यपि बाद में उनके दूसरी संतानें भी हुई, किंतु नित्यानंद प्रभु के प्रति पिता माता का सबसे अधिक प्रेम था। और नित्यानंद प्रभु को हड़ाई पंडित छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। कभी कभी उनको किसी कार्यवश बाहर जाना भी होता था तो बार बार नित्यानंद प्रभु की ओर लौट करके देखते थे, और कभी कभी नित्यानंद प्रभु को साथ में लेकर चलते थे हड़ाई पंडित। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु माता पिता के परम प्रिय थे, और बचपन से उनकी लीलाएं बहुत आश्चर्यजनक थी। साधारण तो देखा जाता है कि बच्चे बचपन में बाल्य क्रीड़ा करते हैं, खिलौने के साथ खेलते रहते हैं, किंतु नित्यानंद प्रभु की बाल्य क्रीड़ा कुछ अलग थी। ये बाल्य क्रीड़ा में ये बच्चों के साथ राम और कृष्ण की लीलाओं का अभिनय करते थे बचपन से। वो बच्चों को ले लेते थे साथ में और देव सभा करते थे। देव सभा अर्थात देवताओं की सभा, तो बच्चे लोग सब देवता बन जाते थे और सब एकत्रित होकर सभा करते थे, एक साथ बैठते थे। तो एक बच्चा धरती का रूप लेकर वो वहां आ जाता था। इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार कृष्ण के आविर्भाव से पहले धरती ने गया का रूप लिया था और जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। तो उसी प्रकार इस देव सभा में जहां देवताओं के मुख्य होते हैं ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी शिव जी सब बैठे हुए हैं देव सभा में। तो एक बच्चा धरती का रूप लेकर वहां आकर जाकर प्रार्थना करता है पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, असुरों का प्रादुर्भाव संसार में है इसलिए पापाचार बढ़ रहा है, इसलिए पृथ्वी का भार बढ़ रहा है, क्योंकि पृथ्वी को सर्वसहा कहा गया है। पृथ्वी माता सब कुछ सहन कर सकती है। जिस प्रकार माता बच्चे का लालन पालन करती है और बच्चे का मलमूत्र त्याग आदि सब कुछ सहन करती है, उसी प्रकार पृथ्वी भी एक माता है। हम पृथ्वी पर तो बहुत सारे अत्याचार करते रहते हैं, पृथ्वी की खुदाई करते हैं, खेत का कर्षण करते हैं शस्य उत्पादन करने के लिए, और यहाँ तक कि पृथ्वी के गर्भ से सोना और दूसरे रत्न सब निकालने के लिए पृथ्वी के गर्भ में हम बील या गर्त बना देते हैं। कोयला निकालने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े गर्त, पृथ्वी पूरा खोखला हो जाता, इसलिए भूकंप होता है, पृथ्वी के नीचे सब खाली है। और पृथ्वी देवी ये सब कुछ सहन करती रहती है, किंतु एक चीज को पृथ्वी देवी सहन नहीं कर सकती, यह है पाप का भार। जब व्यक्ति पापाचार करता है, झूठ बोलता है, अन्याय करता है, ऐसे लोगों को पृथ्वी माता सहन नहीं कर सकती। इसलिए ऐसे जब पापाचारी लोग भर जाते हैं संसार में, पृथ्वी का भार भी बढ़ जाता है, और उससे मुक्त होने के लिए पृथ्वी माता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है। तो जब पृथ्वी ने इस प्रकार प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी जिस प्रकार देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर गए थे भगवान से प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए केवल भगवान ही समर्थ है, ब्रह्मा जी नहीं कर सकते, इसलिए ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके आविर्भाव के लिए। तो भगवान आविर्भूत होकर पृथ्वी का भार हरण करते हैं, और भगवद गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब अधर्म परिव्याप्त होता है, धर्म की ग्लानि होती है, पापाचार बुद्धि प्राप्त होता है, तो संसार में धर्म की स्थापना के लिए और असुरों के विनाश के लिए और भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर जाकर देवताओं के साथ पुरुष सूक्त मंत्र में प्रार्थना करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु अपने बाल सखाओं को लेकर ये क्षीर सागर के तट पर जाते हैं। तो उनके गांव में क्षीर सागर तो नहीं था, लेकिन जो नदी थी उस नदी के तट पर जाते हैं, और नदी के तट पर खड़े होकर बच्चों के साथ, कोई ब्रह्मा बना है, कोई शिव जी बना है, कोई दूसरे इंद्र चंद्र सूर्य सब बने हैं देवता, तो जाकर वहां प्रार्थना करते हैं। तो उस समय कोई दूसरा बच्चा वो छिपा रहता है कहीं दूर से, कोई पेड़ के ऊपर जाके वहां से आकाशवाणी करता है। तो बच्चा कहता है, जैसे भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की थी कि अति शीघ्र भगवान आविर्भूत होंगे देवकी के गर्भ में और संसार का भार हरण करेंगे, असुरों का विनाश करेंगे। तो उसी प्रकार कोई बच्चा जाकर आकाशवाणी करता है और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को बताते हैं कि भगवान आविर्भूत होने वाले हैं, और आकाशवाणी में ये भी कहा जाता है कि देवता लोग अपने अंश रूप में यदुवंश में जन्म ग्रहण करें। तो देवताओं ने यदुवंश में जन्म ग्रहण किया था। तो इस प्रकार जब ये आकाशवाणी होती है और भगवान के आविर्भाव का समय आता है, तो फिर दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु बच्चों को इकट्ठा करके आधी रात में, रात्रि के समय, वो कंस की बंदीशाला बनाते हैं, और कंस की बंदीशाला में जिस प्रकार देवकी और वसुदेव बंदी अवस्था में थे, उस प्रकार एक बच्चा देवकी कोई वसुदेव बनता है, वो कंस की बंदीशाला में फिर भगवान कृष्ण का आविर्भाव होता है, जन्म होता है। तो कोई एक बच्चा कृष्ण के रूप में आविर्भूत होता है चतुर्भुज रूप धारण करके, क्योंकि भगवान कृष्ण सर्वप्रथम चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे और देवकी वसुदेव से कहते हैं कि किस प्रकार पिछले दो जन्मों में वो उनके पुत्र बन चुके हैं, अब तीसरी बार आए हैं उनके पुत्र बनने के लिए, और पुनः देवकी और वसुदेव के अनुरोध से भगवान चतुर्भुज रूप को अंतरहित करके फिर एक छोटा बच्चा बन जाते हैं कृष्ण रूप में, द्विभुज वाला रूप बन जाता है। तो कोई बच्चा आके वहां सो जाता है। तो इस प्रकार भगवान वसुदेव जी को जैसे आदेश देते हैं कि हमें लेकर गोकुल में नंद महाराज के घर पर छोड़ आना। तो वसुदेव जी फिर जाते हैं उस बच्चे को लेकर कोई बच्चा वसुदेव बना है तो जाते हैं यमुना पार करने के लिए। जो जो गांव के नदी है उसी को यमुना मानकर उसको पार करते हैं। फिर गोकुल में जाकर कृष्ण को वहाँ रख कर फिर योगमाया के विस्तार रूप महामाया दुर्गा देवी को वसुदेव जी लेकर आते हैं मथुरा, जो कंस के हाथ से वो छूट जाती है, कंस जब मारना चाहता है। तो इस प्रकार की यह लीला सब करते हैं बचपन से। तो जो गांव के लोगों ने देखा नित्यानंद प्रभु इस प्रकार कृष्ण की लीलाएं करते हैं और फिर पुतना वध लीला, धनुकासुर वध लीला, शकटासुर, ये सब जितने असुरों का वध भगवान कृष्ण ने गोकुल में किया था वृंदावन में, तो ये सारी लीलाओं का अनुष्ठान करते हैं नित्यानंद प्रभु बच्चों को लेकर। और कभी कभी ये राम की लीलाएं भी करते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु राम अवतार में स्वयं लक्ष्मण थे। तो नित्यानंद प्रभु जब लक्ष्मण स्वरूप में थे रामलीला राम के अवतार में, तो उन्होंने बहुत कष्ट सहन किया था लक्ष्मण के रूप में, क्योंकि भगवान रामचंद्र की जो लीलाएं हैं बहुत दुखमय लीलाएं हैं। हम लोग जानते हैं किस प्रकार भगवान रामचंद्र जब राजा बनने जा रहे थे उनको वनवास का आदेश मिला, और भगवान रामचंद्र राज वेश त्याग करके वनचारी वेश में पत्नी सीता देवी और भ्राता लक्ष्मण को साथ लेकर वन में विहार करने लगे और वन का फल मूल खाने लगे, पत्ते के ऊपर सोने लगे। तो लक्ष्मण भी भगवान रामचंद्र की तरह वो भी कष्ट करते थे, किंतु लक्ष्मण को ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो जानते थे कि ये भगवान है रामचंद्र और उनको इतना कष्ट सहन करना पड़ रहा है वन में, इसलिए बहुत दुखी थे लक्ष्मण। किंतु छोटा भाई है, कुछ नहीं बोल सकते भगवान रामचंद्र को, वो मर्यादा के भीतर लक्ष्मण को रहना होता है। तो नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के रूप में उन्होंने बहुत कष्ट सहन किया है। जब सीता जी का हरण हो जाता है तो उस समय राम और लक्ष्मण वन में भटकते रहते हैं क्रंदन करते हुए सीता जी की खोज में, और जब सुग्रीव और उनके मित्रों से भेंट होती है और सुग्रीव और हनुमान आदि ये भगवान रामचंद्र से मित्रता स्थापित करते हैं, तो भगवान रामचंद्र माल्यवन पर्वत पर निवास करते हैं वर्षा काल में, और सुग्रीव जी भूल जाते हैं उनका आश्वासन कि वो भगवान रामचंद्र की सहायता करेंगे, वो तो स्त्रियों के साथ बलि वध के पश्चात वो आनंद में रहते हैं। तो लक्ष्मण क्रोधित होकर जाते हैं धनुष और तीर बाण साथ में लेकर, और सुग्रीव को कहते हैं कि तुम यहाँ आनंद कर रहे हो और हमारे स्वामी भगवान रामचंद्र वहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस प्रकार सीता की खोज में जाकर सीता का समाचार प्राप्त करने के लिए। तो लक्ष्मण जी वहाँ क्रोधित होकर अपना धनुष बाण उठाते हैं सुग्रीव के राज्य को ध्वंस कर देने के लिए। तो सुग्रीव जी भयभीत होकर फिर उनको स्मरण आता है, उन्होंने कहा था भगवान रामचंद्र से, उनकी सहायता के लिए, फिर वो आते हैं दौड़ते हुए। फिर हनुमान जी जाते हैं सीता जी का समाचार ले आते हैं कि सीता जी वहाँ लंका के अशोक वाटिका में है। तो फिर बानरों के साथ जाते हैं, भगवान रामचंद्र सेतुबंध बनाते हैं। तो ये सारी लीलाएं ये नित्यानंद प्रभु कर रहे थे, भगवान रामचंद्र की लीलाएं। तो वो सेतुबंध जब बनाने जाते हैं तो गांव की जो नदी है उसमें वो पेड़ काट करके उसमें डाल देते हैं सेतुबंध बनाने के लिए और उसके ऊपर चल करके जाते हैं। तो इस प्रकार वो सब लीला करते हैं। और हम जानते हैं सेतुबंध बनाने के बाद जब भगवान रामचंद्र गए लंका में और रावण के साथ युद्ध हुआ, तो रावण के युद्ध में रावण ने शक्ति भेजा था, लक्ष्मण का शक्ति भेद हुआ था, लक्ष्मण अचेतन होकर गिर गए थे। तो वो लीला भी नित्यानंद प्रभु करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि नित्यानंद प्रभु स्वयं लक्ष्मण बने थे, क्योंकि पूर्व लीला में वो लक्ष्मण थे। तो एक दूसरा बालक वो रावण बना था। तो रावण लक्ष्मण से कहता है कि लक्ष्मण अब मैं इस शक्ति को भेज रहा हूँ, संभालो इस शक्ति को करके वो शक्ति को फेंकता है लक्ष्मण की तरफ। तो वो शक्ति क्या था? एक कमल का फूल था उसी को शक्ति मान करके फेंक रहे थे। और वो आकर नित्यानंद प्रभु जो लक्ष्मण का अभिनय कर रहे थे उनके छाती में लगा, तो शक्ति भेद हुआ, नित्यानंद प्रभु अचेतन होकर गिर गए। तो जब नित्यानंद प्रभु अचेतन होकर गिर गए और दूसरे बालक गण सब अभिनय कर रहे हैं, तो बहुत काल तक बच्चों ने देखा कि नित्यानंद प्रभु नहीं उठ रहे, उनकी चेतना वो प्राप्त चेतना को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो सब बच्चे नित्यानंद प्रभु के चारों तरफ घिर करके रोने लगे। उन लोगों ने सोचा कि नित्यानंद प्रभु का शायद प्राण चला गया, तो सब रोने लगे। और उनका रोना सुनकर गांव के लोग भी सब दौड़ने लगे, क्या बच्चे सब रो रहे हैं। तो गांव के लोग सब आ गए और उन लोगों ने देखा कि नित्यानंद प्रभु अचेतन होकर पड़े हैं और उनको घिर करके सब बच्चे रो रहे हैं। तो उन लोगों ने आकर हिलाया नित्यानंद प्रभु को, वो नहीं उठ रहे। तो उनके माता पिता को ये समाचार मिला, माता पिता भी दौड़ते हुए रोते हुए वहां आकर पहुंचे और नित्यानंद प्रभु को देखकर वो लोग भी रोने लगे। तो इस प्रकार बहुत देर तक सभी लोग रो रहे हैं, किसी को कोई बुद्धि नहीं जुट रही कि क्या किया जाए इस स्थिति में। तो एक व्यक्ति ने देखा कि एक बालक वो सुसेन बनकर खड़ा है जो वैद्य वो खड़ा है, और फिर उसने देखा कि बहुत दूरी पर एक बालक हनुमान बनकर खड़ा है। तो उसने कहा कि हम देखते हैं कि एक बालक वहां हनुमान बनकर खड़ा है और एक सुसेन वैद्य बनकर खड़ा है। तो जैसे रामलीला में हुआ था कि वैद्य ने कहा कि गंधमादन पर्वत से जड़ी बूटी लाना है तब जाकर लक्ष्मण ठीक होंगे, तो ये वैद्य आकर देखना चाहिए लक्ष्मण को और बताना चाहिए उस उपचार क्या है। तो जो रामचंद्र बन करके जो बालक अभिनय कर रहा था उसने बुलाया सुसेन वैद्य को, सभी लोग तो रो रहे थे अभी तक, अब उनको ये बुद्धि आई कि उसको बुलाना चाहिए। तो आकर देखा लक्ष्मण को जो नित्यानंद प्रभु खड़े पड़े हुए थे, और उन्होंने कहा कि गंधमर्दन पर्वत से ये विशल्यकरणी जड़ी बूटी आएगी, तब जाकर ये ठीक होंगे। और समय बहुत कम है, इसको एक रात के भीतर आना है। तो दूसरा बालक रामचंद्र की आज्ञा लेकर हनुमान से, भगवान रामचंद्र हनुमान को बुलाया, क्योंकि ये कार्य बहुत कठिन था और हनुमान ही इसको कर सकते हैं। तो जो रामचंद्र का अभिनय कर रहा था जो बालक, हनुमान को आदेश दिया कि तुम गंधमर्दन जाकर ये जड़ी बूटी लाओ। तो जो बालक हनुमान के रूप में खड़ा था वो तुरंत अपने काम में लग गया और जाकर मार्ग में उसने देखा एक साधु का आश्रम। तो ये आकाश मार्ग में उड़ते हुए हनुमान जी जा रहे थे, जब साधु का आश्रम देखा तो उस साधु ने हनुमान जी को बुलाया। तो हनुमान जी रुक गए, तो उन्होंने कहा कि हमारे आश्रम में थोड़ा आप विश्राम करिए, आप बहुत दूर से उड़ करके आ रहे हैं, हमारे आश्रम में थोड़ा विश्राम कीजिए। किंतु हनुमान ने कहा कि नहीं, अभी हम विश्राम करने का समय नहीं है, अब लक्ष्मण का शक्तिभेद हुआ है और हम अति शीघ्र ये जड़ी बूटी गंधमर्दन पर्वत से लेकर जब तक नहीं पहुंचेंगे लक्ष्मण को जीवित कर पाना संभव नहीं होगा। तो इसलिए साधु ने कहा कि ठीक है, आप यदि विश्राम नहीं करेंगे, ठीक है आप ये पार्श्ववर्ती नदी में स्नान करके आइए, थोड़ा भोजन करके जाइए। तो हनुमान जी ने मान लिया उनकी बात। जब गए नदी में स्नान करने के लिए तो वहां पर एक लड़का जो कुंभीर बन करके मगर वहाँ खड़ा था पानी में, जैसे हनुमान जी ने स्नान किया उनको पकड़ लिया। तो हनुमान जी के साथ उसका युद्ध हुआ और हनुमान जी ने उसको पराजित किया। फिर जब आश्रम में आए तो वो साधु एक असुर बन के खड़ा है, वस्तु तो वो एक असुर था साधु के रूप में, वो हनुमान जी को विलंबित करना चाह रहा था जिससे कि वो गंधमर्दन से जड़ी बूटी लेकर उचित समय पर नहीं पहुंच पाए जिससे लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी, ये योजना थी। तो हनुमान जी का युद्ध हुआ इस असुर के साथ, ये वस्तुतः रावण का अनुचर था। तो उसको पराजित करके जब गंधमर्दन पर्वत पर पहुंचे हनुमान जी, ये सब अभिनय चल रहा है बच्चों का अभिनय चल रहा है। तो गंधमर्दन पर्वत पर पहुंचे तो वहां गंधर्वगण सब खड़े हैं जो गंधमर्दन पर्वत की सुरक्षा करते हैं, तो उनके साथ भी हनुमान जी का युद्ध हुआ और बाद में उनको पराजित किया हनुमान जी ने। किंतु जड़ी मुठी वो पहचान नहीं सकते थे, पूरा गंधमर्दन पर्वत उठाया और आकर पहुंचे। तो वैद्य ने उससे जड़ी बूटी निकाल करके लक्ष्मण जी को दिया, तो लक्ष्मण जी अब चेतन हो गए। तो जब नित्यानंद प्रभु चेतन अवस्था में आ गए तो सभी लोग प्रसन्न हो गए और पिता माता भी बहुत प्रसन्न होकर नित्यानंद प्रभु को आलिंगन करने लगे कि इस प्रकार का अभिनय इसको कौन किसने सिखाया, ये छोटा बालक है और इतना सुंदर अभिनय कर रहा है कि इतने लोग चाहने पर भी उसको सचेतन नहीं कर सके, और जैसे अचेतन सचमुच अचेतन होकर पड़ा था। तो गांव के लोग सब आश्चर्यचकित होने लगे, वो लोग सोच रहे थे कि नित्यानंद को ये छोटा बालक है उसको ये सब लीला और अभिनय किसने सिखा है, उसको कैसे पता चला ये सब राम की लीला इस प्रकार हुई थी, कृष्ण की लीला इस प्रकार हुई थी और बच्चों के साथ ये अभिनय करा है बाल्यावस्था से, तो लोग आश्चर्यचकित थे और सभी लोगों का प्रेम दिनों दिन नित्यानंद प्रभु के प्रति वर्धित हो रहा था, बढ़ रहा था। सभी लोग अपने पुत्र कन्याओं से नित्यानंद प्रभु को अधिक प्रेम करते थे, तो पूरे गांव में नित्यानंद प्रभु सभी के दुलारे प्रिय थे। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु की बाल्य लीला कृष्ण और राम लीला में निमग्न होकर ये बाल्य लीला समाप्त हुई। तो जब नित्यानंद प्रभु थोड़ा किशोर अवस्था को प्राप्त हुए तो एक दिन एक सन्यासी हराई पंडित के घर पर आए और प्राचीन काल में जो सन्यासीगण या भिक्षु होते थे वो जिस गांव में जाते थे तो गांव के जो ब्राह्मण परिवार हैं ये लोग बुलाते थे उनको भोजन देने के लिए। तो वो सन्यासी आकर हराई पंडित के घर पर रुके तो हराई पंडित ने सन्यासी का आदर सत्कार किया, उनका आतिथ्य किया और रात भर हराई पंडित और नित्यानंद प्रभु सन्यासी के साथ कृष्ण कथा की चर्चा करने लगे। कृष्ण कथा की चर्चा में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। नित्यानंद प्रभु और हराई पंडित दोनों सन्यासी के साथ कृष्ण की चर्चा कर रहे थे, कृष्ण की लीलाओं की। जब प्रातः काल हुआ सन्यासी स्नान करने के पश्चात वो जाने के लिए निकले तो हराई पंडित उनको विदा देने के लिए उनके पास उपस्थित थे। तो सन्यासी ने हराई पंडित से कहा कि हम अब तीर्थाटन में निकल रहे हैं और उस तीर्थाटन में जाने के लिए मुझे कोई सहायक चाहिए, कोई मेरे साथ कोई सहायक रहे तो मैं ठीक ढंग से ये तीर्थाटन कर सकूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ये जो पुत्र है नित्यानंद प्रभु, इस पुत्र को हमारे साथ भेज दो, इसको हम लेकर तीर्थाटन करेंगे और तीर्थाटन के पश्चात हम इसको तुम्हारे पास भेज देंगे और जब तक ये मेरे पास रहेगा हम तुम्हें आश्वासन देते हैं कि हम हर तरह से इसका यत्न करते रहेंगे। जब सन्यासी ने इस प्रकार कहा हराई पंडित से तो हराई पंडित बहुत बड़ी सोच में पड़ गए, चिंता में पड़ गए कि अब क्या करें, यदि सन्यासी की इच्छा को पूर्ण नहीं करते हैं तो आतिथ्य में त्रुटि होगी, जो हमारे अतिथि हैं उनकी इच्छा को हम पूर्ण नहीं कर सके और यदि पूर्ण करते हैं सन्यासी की इच्छा को तो हम जीवन धारण नहीं कर पाएंगे, नित्यानंद को छोड़कर जीवन धारण करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो हराई पंडित सोच रहे थे हमारी अवस्था इस प्रकार हुई जिस प्रकार महाराज दशरथ की अवस्था हुई थी, महाराज दशरथ के भगवान श्री राम बहुत प्यारे पुत्र थे। भगवान श्री राम के बिना महाराज दशरथ को जीवित रहना उनके लिए असंभव था, और जब विश्वामित्र मुनि आए महाराज दशरथ के पास और उनसे राम को ले जाने के लिए कहा, तो दशरथ की अवस्था इस प्रकार हुई थी, आज जैसी हड़ाई पंडित की अवस्था हुई है। महाराज दशरथ भी उस समय सोच रहे थे कि राम के बिना उनके लिए जीवित रहना असंभव होगा, और यदि राम को नहीं देते हैं तो मुनि का क्रोध उनको सहन करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार हड़ाई पंडित भी सोच रहे थे, यदि सन्यासी को नहीं देते हैं अपने पुत्र को तो हो सकता है कि सन्यासी उनको श्राप दे सकते हैं, या आतिथ्य सत्कार में त्रुटि होने के कारण हो सकता है वो श्रापग्रस्त हो जाएंगे या पापग्रस्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार सोचते हुए द्विविधा में पड़े हड़ाई पंडित अपनी पत्नी के पास गए और पत्नी से इस घटना का वर्णन किया, पत्नी के सामने कि किस प्रकार ये सन्यासी उनको अपने प्राण प्रिय नित्यानंद को मांग रहे हैं साथ ले जाने के लिए। तो उनकी पत्नी जो कि अत्यंत पतिव्रता थी, पति की इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाती थी, तो पद्मावती देवी ने कहा कि आपकी जैसी इच्छा है उस इच्छा को हम ग्रहण करेंगे, हम उससे सहमत हैं, आपकी जैसी इच्छा है आप करिए। तो पत्नी से इस प्रकार आश्वासन प्राप्त होने के पश्चात हड़ाई पंडित इस सन्यासी के पास आए और उनके हाथ अपने प्रिय पुत्र नित्यानंद प्रभु को समर्पित कर दिया, और वो जानते थे कि नित्यानंद प्रभु के बिना उनका जीवित रहना असंभव है, फिर भी जैसे वो अपने प्राण को हृदय से निकाल करके सन्यासी के हाथ में रख रहे, तो नित्यानंद प्रभु पिता माता को प्रणाम करके सन्यासी के साथ निकले और हड़ाई पंडित और माता पद्मावती नित्यानंद प्रभु को देखते देखते और आंखों से अश्रु विसर्जन करते करते वो अचेतन हो गए दोनों, क्योंकि उनके बिना जीवित रहना उनके लिए संभव नहीं था। तो इस प्रकार गांव के लोगों ने उनको समझाया, उनको सचेत किया, किंतु बार बार नित्यानंद प्रभु के बारे में सोचकर वो बार बार चेतनाहीन हो जाते थे, अचेतन हो जाते थे। तो इस प्रकार 3 महीने तक दोनों ने कुछ खाद्य भी ग्रहण नहीं किया था नित्यानंद प्रभु के विरह में, केवल नित्यानंद प्रभु के बारे में ही सोचते रह गए और रोते रहे रात दिन। उसके पश्चात दोनों ने शरीर त्याग दिया था। तो नित्यानंद प्रभु सन्यासी के साथ आकर उन्होंने बहुत सारे तीर्थों का भ्रमण किया और पुनः सन्यासी का संग छोड़कर नित्यानंद प्रभु एक बार माधवेंद्रपुरी के साथ उनका मिलन हुआ। माधवेंद्रपुरी कृष्ण प्रेम से पूरित रहते थे, पूर्ण रहते थे। ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय में माधवेंद्रपुरी से ये गौड़ीय संप्रदाय का जो प्रेम भाव वहीं से अंकुरित हुआ है, क्योंकि माध्व संप्रदाय में ये कृष्ण प्रेम उस समय उसका उतना कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं रहता था। माधवाचार्य संप्रदाय के जो दो मुख्य बातें थी, एक है अद्वैतवाद निरासन और दूसरा है भगवान कृष्ण की मूर्ति को श्रद्धापूर्वक सेवा, मूर्ति की सेवा। कृष्ण मूर्ति नित्य जानी श्रद्धाय सेवन, कृष्ण मूर्ति नित्य है इसलिए श्रद्धापूर्वक भगवान के विग्रह की सेवा। ये माध्य संप्रदाय के दो सारभूत बातें हैं। किंतु माधवेंद्रपुरी जो माध्य संप्रदाय के अंतर्गत थे, उन्हीं से कृष्ण प्रेम का अंकुरोद्गम हुआ था। माधवेंद्रपुरी सर्वप्रथम कृष्ण से विरह का अनुभव करते थे, कृष्ण प्रेम में विरह का अनुभव करते हुए माधवेंद्रपुरी कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी भूमि पर लौटते थे। ये कृष्ण प्रेम का लक्षण उनके शरीर में दृष्टिगत होता था। इसलिए राधा रानी के भाव में माधवेंद्रपुरी सदा सर्वदा रहते थे। जिस प्रकार राधा रानी कृष्ण के विरह का अनुभव करती थी जब भगवान कृष्ण मथुरा चले गए थे, उसी प्रकार माधवेंद्रपुरी भी कृष्ण का विरह अनुभव करते थे। हे दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदयं त्वद अलोक कातरम दयितं भ्रमति किं करोमि हम। ये श्रीमती राधा रानी की उक्ति है कि ये दीन दयार्द नाथ मथुरा नाथ, कृष्ण को मथुरा नाथ कह रही है श्रीमती राधा रानी, जबकि कृष्ण जब ब्रज में थे गोपीनाथ कहलाते थे। जब मथुरा चले गए तो गोपियां उनको मथुरा नाथ कहकर पुकारने लगे। तो हे दीन दयार्द नाथ मथुरा नाथ कदावलोक्य से हम आपका दर्शन कब प्राप्त कर सकेंगे। हृदयं त्वद अलोक कातरम, आपके अदर्शन से, दर्शन के बिना ये हृदय कातर हो रहा है, ये हृदय विरह का अनुभव कर रहा है। और ये मस्तक भ्रमित हो रहा है। तो ये राधा रानी का भाव था, जो कि इस श्लोक का उच्चारण माधवेंद्रपुरी नित्य प्रति करते थे, इसी भाव में रहते थे। तो जब नित्यानंद प्रभु की भेंट माधवेंद्रपुरी से हुई, जो माधवेंद्रपुरी स्वयं रहते थे कृष्ण प्रेम में निमग्न, नित्यानंद प्रभु भी कृष्ण प्रेम में निमग्न रहते थे। और जब दोनों का साक्षात्कार हुआ तो दोनों परस्पर को देखते ही कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर भूमि में लौटने लगे। और कुछ काल के पश्चात थोड़ा स्वस्थ होकर जब उठे तो दोनों परस्पर को आलिंगन करने लगे और कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता था। तो माधवेंद्रपुरी सोच रहे थे कि ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि नित्यानंद जैसा व्यक्ति का संग आज मुझे प्राप्त हुआ, और नित्यानंद प्रभु का संग जहाँ प्राप्त होता है वो स्थान वैकुंठ के समान सर्वतीर्थमय हो जाता है, सारे तीर्थ वहाँ निवास करते हैं। और नित्यानंद प्रभु भी माधवेंद्रपुरी के संग प्राप्त होकर अपने को सौभाग्यशाली मानते थे। इस प्रकार कुछ काल दोनों ने सत्संग किया, साथ समय बिताया। बाद में नित्यानंद प्रभु ने माधवेंद्रपुरी से विदा लेकर समग्र भारत का भ्रमण किया, जितने सारे तीर्थ स्थान हैं समग्र भारत में, तो तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। और तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए नित्यानंद प्रभु वृंदावन में आकर पहुंचे, जबकि नित्यानंद प्रभु के जन्म के एक वर्ष बाद चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव नवद्वीप में हो चुका था, किंतु नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का मिलन अभी तक नहीं हुआ है। नित्यानंद प्रभु वृंदावन आए हैं, वृंदावन में वो सारे लीला स्थानों का भ्रमण करते हैं नित्यानंद प्रभु, और अपने पूर्व लीलाओं का स्मरण करते रहते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु पूर्व लीला में बलराम थे, तो बलराम ने जो जो लीलाएं की थी वृंदावन में, नित्यानंद प्रभु उन्हीं स्थान पर जाकर उन लीलाओं का स्मरण करते रहते थे, और कृष्ण प्रेम में विहल होकर वृंदावन में भ्रमण करते हुए वो कभी नाचते थे, कभी गाते थे, कभी प्रेम से अचेतन हो जाते थे, इस प्रकार वृंदावन में विहार करते थे। किंतु नित्यानंद प्रभु जहाँ कहीं किसी मंदिर में जाते हैं, उनको लगता कि मंदिर में कृष्ण नहीं है, सिंहासन शून्य है, तो उनको लगा कि सारे वृंदावन में ये मंदिर में भगवान कृष्ण का सिंहासन शून्य है, कृष्ण उपस्थित नहीं है, तो वो सोच रहे थे कि कृष्ण कहाँ गए। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि अब कृष्ण नवद्वीप में सती माता के पुत्र के रूप में आविर्भूत हो चुके हैं। ब्रजेंद्र नंदन जयी सती सुत हैल सही बलराम हैल निताय। ब्रजनंदन कृष्ण सची सुत सची माता के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए हैं नवद्वीप में, और वहां पर नवद्वीप में आविर्भूत होकर अब वो संकीर्तन आंदोलन आरंभ करने जा रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु को जब पता चला कि अब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हो चुका है नवद्वीप में और वो संकीर्तन आंदोलन का आरंभ करने जा रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु वृंदावन त्याग करके नवद्वीप की ओर चल पड़े चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। तो जब नवद्वीप में जाकर पहुंचे तो नित्यानंद प्रभु नंदन आचार्य के घर पर जाकर ठहरे। नंदन आचार्य ये महाभागवत भक्त हैं, और उनके घर पर भी कोई भी अतिथि आता था तो अतिथि का सम्मान करते थे और अच्छी तरह आतिथ्य करते थे। तो जब नित्यानंद प्रभु पहुंचे तो नंदन आचार्य ने उनका आदर सत्कार किया, उनका उनके चरण धोए, उनको खाने पीने के लिए अर्पित किया खाद्य द्रव्य। तो नित्यानंद प्रभु उनके घर पर रुके और प्रतीक्षा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की, उनसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इधर से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के नंदन आचार्य के घर पर पहुंचने से पहले, 2-3 दिन पहले सारे भक्त लोगों को बता चुके थे कि 2-3 दिन में कोई एक महान व्यक्ति यहाँ नवद्वीप आएंगे और उनसे हमारी भेंट होगी। तो भक्त लोग सोच रहे थे कि वो महान व्यक्ति कौन है, कौन आएगा, किंतु ये सूचना उनको प्राप्त थी कोई आने वाला है। और जिस दिन नित्यानंद प्रभु पहुंचे उसी दिन रात में चैतन्य महाप्रभु ने एक स्वप्न देखा। वो स्वप्न में देख रहे हैं कि एक रथ आ रहा और उस रथ पर रथ की ध्वजा वो उड़ रही है और उस रथ पर एक महान देदीप्यमान व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनके शरीर से 7 कोटि सूर्य के समान तेज निकल रहा। वो गौरवर्ण शरीर है और ये नील वस्त्र पहने हुए हैं और हाथ में मुसल है और शरीर में फूल की मालाएं हैं और दिव्य अलंकार से विभूषित है उनका शरीर। ऐसे व्यक्ति रथ पर चढ़कर आ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के घर के सामने। वहां पहुंचकर ये पूछ रहे हैं कि ये क्या निमाई पंडित का घर है? तो चैतन्य महाप्रभु को जब नित्यानंद प्रभु ने स्वप्न में इस प्रकार पूछा तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि हाँ ये निमाई पंडित का घर है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, कल तुम्हारे साथ हमारा मिलन हो। ये कहकर वो चले गए, स्वप्न टूट गया। तो दूसरे दिन प्रातः काल स्नान करके जब चैतन्य महाप्रभु आए भक्तों के पास तो भक्त लोगों से कहा कि पिछली रात हमने ऐसा स्वप्न देखा है, एक कोई महान व्यक्ति यहाँ आ चुके हैं और हम उन्होंने कहा है कि आज उनसे भेंट होगी, तो चलो हम लोग सब चलते हैं उनसे मिलने के लिए। भक्तों को कुछ पता नहीं है कि वो महान व्यक्ति कौन है और कहाँ रुके हुए हैं। चैतन्य बाबू सारे भक्तों को लेकर चले सीधा नंदन आचार्य के घर पर, क्योंकि उनको पता था नहीं स्वयं भगवान है, वो जानते हैं कि कौन आया है और कहाँ रुके हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे नंदन आचार्य के घर पर तो सारे भक्तों ने देखा कि नित्यानंद प्रभु नंदन आचार्य के घर पर प्रेम विहोल होकर बैठे हुए हैं, जैसे समाधि में बैठे हैं प्रेम विहोल होकर। और चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए जाकर प्रणाम किया उनसे, और सारे भक्त लोगों ने भी प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो नित्यानंद प्रभु ने केवल उनकी ओर देखा, चैतन्य महाप्रभु की ओर देखा, और देख करके एक टक जैसे देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं उनके सामने, वो देखते जा रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के सुंदर रूप का अमृत जैसे नित्यानंद प्रभु पान कर रहे हैं, तो वो ऐसे देखते जा रहे हैं और उनमें और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, और बहुत देर तक ऐसे वो देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की ओर। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि नित्यानंद उनके सौंदर्यामृत का पान कर रहे हैं, किंतु जो भक्तगण उनके साथ आए हैं ये लोग नित्यानंद प्रभु को नहीं जानते हैं, उनकी महिमा को नहीं जानते हैं, जबकि चैतन्य महाप्रभु जानते हैं नित्यानंद प्रभु के महिमा को। इसलिए नित्यानंद प्रभु की महिमा को प्रकट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने इशारा किया श्रीवास पंडित को कि श्रीमद् भागवत का श्लोक उच्चारण करने के लिए। तो श्रीवास पंडित ने श्रीमद् भागवत का एक बहुत सुंदर श्लोक का उच्चारण किया, जिस श्लोक को सुनकर स्वयं सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट हुए थे। इसमें भगवान कृष्ण का रूप वर्णन है। बराह पीड़ा नटवर वपु कर्ण यो कर्णिकारम। तो ये भगवान श्री कृष्ण ये बराह पीड़ा नटवर वपु कर्ण यो कर्णिकारम। तो भगवान श्री कृष्ण अपने माथे पर मोर पंख लगाए हुए हैं, और उनका शरीर कैसा है, नटवर वपु। नट अर्थात नर्तक, वर अर्थात श्रेष्ठ। जो नर्तक श्रेष्ठ है, जैसे जो नृत्य करते हैं तो ये लोग एक नर्तक की वेशभूषा में आते हैं स्टेज पर, बहुत सुंदर लगते हैं। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण जो सर्वश्रेष्ठ नर्तक है, वस्तुतः समस्त नृत्य और गीत संगीत इस विद्या का, नृत्य और संगीत विद्या का उच्च है भगवान श्री कृष्ण, उनसे सब कुछ आया है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ नर्तक हैं और संगीतज्ञ भी हैं भगवान कृष्ण। तो बढ़ा पीड़ा नटवर, और उनके शरीर जो है ये नट श्रेष्ठ, नर्तक श्रेष्ठ उनका शरीर लग रहा है। तो भगवान कृष्ण की जो वेशभूषा है, ऐसे तो उनका शरीर बहुत सुंदर है, श्याम वर्ण के हैं, और जो वेशभूषा पहने हुए हैं ऐसा लग रहा है कि कोई श्रेष्ठ नर्तक स्टेज पर खड़ा है। बिभ्रत वास कनक कपिश वैजयंती च माला। और भगवान जो वस्त्र पहने हुए हैं ये कनक अर्थात सोने वर्ण का है, अर्थात पीला रंग का रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं। तो श्याम वर्ण का शरीर और पीले वर्ण का वस्त्र बहुत सुंदर लगता है, अच्छा मैचिंग है। भगवान नर्तक श्रेष्ठ हैं इसलिए चुन चुन करके वस्त्र पहनते हैं, कैसे सुंदर लगे। तो पीत वस्त्र पहने हुए हैं और वैजयंती चमाला, और गले में वैजयंती माला पहने हुए हैं। वैजयंती माला जो पांच रंगीन पुष्पों की माला है, उसको वैजयंती माला कहते हैं। और कर्णे व कर्णिकारम, दो कानों में कान फूल के लिए कर्णिकार पुष्प को लगा है, क्योंकि भगवान का जो वन वेश है बहुत सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण जब वन में जाते हैं, ये वन से डाली पत्तियां फूल लेकर वेश होते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं उसमें। तो वैजयंती माला तो वन के फूलों की माला है, और कान में भी कर्णिकार पुष्प जो है कन्यर फूल उसको लटकाए हुए कुंडल जैसा, और मोर पंख माथे पर लगाए, रंध्रान वेणु अधर सुदया पूरयन गोप वृंदे। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो सखाओं के द्वारा वेष्टित होकर प्रवेश करते हैं, उनके सखागण उनके चारों तरफ रहते हैं घिर करके। और भगवान जब बंसी वादन करते हैं तो रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन। तो साधारणतः बंसी बजाने के लिए उसमें हवा भरनी पड़ती है, फूंकना पड़ता है, किंतु भगवान हवा नहीं भर रहे हैं, फूंक नहीं रहे, उसमें क्या भर रहे हैं, अधर सुधा को भर रहे हैं। भगवान के जो अधर अमृत है उस अमृत को बंसी में भर रहे हैं, और उसको भरने के कारण जो ध्वनि निकलती है बंसी से, ये सारे जगत को उनकी ओर आकृष्ट करती है, क्योंकि वो बंसी ध्वनि वो अमृत जैसी ध्वनि है, आनंद प्रदान करने में समर्थ है। ये कोई साधारण बंसी ध्वनि नहीं है, इसलिए सारे जगत के जीवों को वो कृष्ण की ओर आकृष्ट करती है वो बंसी ध्वनि भगवान की। यहां तक कि भगवान की बंसी ध्वनि से विपरीत प्रतिक्रिया भी दृष्टिगत होती है। जैसे कोई चलने वाला जीव वो रुक जाता है, और जो स्थिर जीव है वो चलने लगता है। जैसे जमुना का जल है, जमुना का जल प्रवाहित होता है नीचे की ओर, किंतु जब भगवान कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई पड़ती है जमुना का जल रुक जाता है, नीचे प्रवाहित नहीं होता है, वहां रुक जाता है और उल्टा ऊपर की ओर चलता रहता है। ये विपरीत स्वभाव को प्राप्त हो जाता है भगवान की बंसी ध्वनि का ये स्वभाव, क्योंकि वो दिव्य अमृत से ये ध्वनि भरी हुई है, इसलिए निस्तेज व्यक्ति को सतेज कर देता है, मृत व्यक्ति को जीवित कर देता है भगवान की वंशी ध्वनि। वृंदावनं स्वपद रमणं प्राविशत गीत कीर्ति। तो भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो जूता नहीं पहनते, खाली पैर वृंदावन में भ्रमण करते हैं, और यही कारण है कि वृंदावन की भूमि भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह से शोभित हो जाती है, चारों ओर भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह पड़े रहते हैं, क्योंकि भगवान खाली पैर चल रहे हैं। अगर पादुका पहने होते तो पादुका का चिन्ह होता, भगवान का चरण चिन्ह नहीं होता। और भगवान के चरण चिन्ह में शंख गदा पद्म ये सब चिन्ह रहते हैं उसमें। तो वृंदावन की भूमि इसलिए पवित्र हो गई, भगवान के चरण चिन्हों को प्राप्त होकर वृंदावन की भूमि धन्य हो गई, इसलिए गोपियां वृंदावन की गौरव गाथा गान करती हुई कहती हैं, वृंदावनं सखी विभो वितनोति कीर्ति। हे सखी, ये वृंदावन भूमि सारे संसार में ये पृथ्वी की कीर्ति का वितरण कर रही है, क्योंकि इस पृथ्वी पर वृंदावन है इसलिए पृथ्वी भी सौभाग्य मंडित हो गई। यद्येव कि सुत पदम्भुज लब्ध लक्ष्मी। ये वृंदावन भूमि देवकी सुत अर्थात देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त होकर धन्य हो गई, इसलिए इसकी कीर्ति सारे संसार में वितरित हो रही है। सारे संसार के लोग वृंदावन भूमि में आते हैं क्योंकि वृंदावन भूमि भगवान के चरण चिन्ह को अपने वक्ष देश पर धारण करती है, और जो व्यक्ति इस धाम को आता है भगवान के चरण धूलि के स्पर्श से वो पवित्र हो जाता है, उसके सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ये वृंदावन भूमि का प्रभाव है। तो जब इस श्लोक को पढ़ा श्रीवास पंडित ने तो नित्यानंद प्रभु जो ध्यान पूर्वक चैतन्य महाप्रभु के रूप का दर्शन कर रहे थे, देख रहे थे, उनके सौंदर्य अमृत को पान कर रहे थे, वो अपने को संभल नहीं सके। उनमें कृष्ण प्रेम का उदय होने के कारण वो अत्यंत विह्वल होकर भूमि में लौटने लगे। वहीं पर इस श्लोक सुनकर और इस प्रकार लौटते हुए रोते हैं और लौटते जा रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित से कहा कि इस श्लोक को बार बार बोलो। तो श्रीवास पंडित इस श्लोक को बार बार आवृत्ति कर रहे थे तो नित्यानंद प्रभु प्रेम विह्वल होकर कभी उठते थे, नृत्य करते थे आनंद में, और आकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको उठाया, उनको आलिंगन किया और नित्यानंद प्रभु अब चैतन्य महाप्रभु की गोद में पड़े हुए हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे साधारण रूप से अनंत शेष की गोद में भगवान रहते हैं, किंतु अब ये विपरीत हो गया, अब अनंत शेष नित्यानंद प्रभु बलराम ये भगवान की गोद में पड़े हुए। तो सारे भक्तों ने जब देखा नित्यानंद प्रभु की महिमा तो ये बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को स्वस्थ किया और दोनों फिर नृत्य करने लगे, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। जब ये दोनों नृत्य करने लगे तो सारे भक्त लोग भी नृत्य करने लगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार नृत्य कीर्तन बहुत देर तक चला। तब फिर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने फिर स्थिर किया और दोनों भक्तों के साथ आए श्रीवास पंडित के घर। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को बुलाया अपने पास और उनसे कहा कि अब तुम्हारे घर पर नित्यानंद प्रभु निवास करेंगे, तुम इनका यत्न लेना नित्यानंद प्रभु का। तो श्रीवास पंडित बहुत प्रसन्न हो गए नित्यानंद प्रभु को प्राप्त होकर अपने घर पर। तो नित्यानंद प्रभु की सारी सुख सुविधाओं का उन्होंने विधान किया और सुभाष पंडित और उनकी पत्नी मालिनी देवी नित्यानंद प्रभु को पुत्र के रूप में पालन किया, इसलिए नित्यानंद प्रभु मालिनी देवी को माता कहकर पुकारते थे। उनके सामने बच्चे जैसा हो जाते थे मालिनी देवी के सामने, और नित्यानंद प्रभु ऐसे ही अवधूत थे। तो एक दिन श्रीवास पंडित के घर पर एक घटना घटित हुई। मालिनी देवी वो भगवान के बर्तन मांज रही थी, बाहर मांज रही थी घर के बाहर, और भगवान के लिए जो घृत रखने का पात्र है, घी रखने का जो पात्र है, उसको मांज करके वो रख दिया था। तो अचानक एक कौवा उड़ते हुए आया और उस पात्र को उठा करके ले गए, उड़ करके चला गया। तो मालिनी देवी को बहुत दुख हुआ कि भगवान का घृत पात्र को कौवा ने उठा लिया है, और वो आसपास में कहीं दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, कौवा लेकर चला गया। तो मालिनी देवी बहुत दुख कर रही थी, भगवान का पात्र चला गया, कौवा ने उठा लिया। तो नित्यानंद प्रभु ने जब देखा मालिनी देवी दुख कर रही है घृत पात्र के लिए, तो उन्होंने आश्वासन दिया मालिनी देवी को, आश्वस्त किया कि माता तुम चिंता मत करो, हम अभी उस कौवा को बुलाते हैं, वो पात्र लेकर आएगा आपके सामने। तो वहीं खड़े होकर नित्यानंद प्रभु ने कौवा को बुलाया कि ये कौवा एकाक तुम जल्दी आओ घृत पात्र लेकर, यहाँ जहां से उठाए वहां रख दो। तो मालिनी देवी आश्चर्यचकित हो गई कि जैसे वो कौवा अचानक आया था उसी प्रकार दिखाई नहीं पड़ रहा था, कहाँ चला गया था, तुरंत वो घृत पात्र लेकर आया, आकर जहां से उठाया था वहीं रख दिया और फिर चला गया। तो मालिनी देवी आश्चर्यचकित हो गई नित्यानंद प्रभु की महिमा को देखकर, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, स्वयं बलराम थे, भगवान थे। तो इस प्रकार सुभाष पंडित के घर पर चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन चल रहा था। प्रतिदिन सुभाष पंडित के घर पर भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे, और दरवाजा बंद रहता था, बाहर के लोगों को अनुमति नहीं थी भीतर संकीर्तन में अंश ग्रहण करने के लिए, केवल जो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग भक्त थे उनको लेकर संकीर्तन करते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा नित्यानंद प्रभु से कि नित्यानंद कल पूर्णिमा तिथि है, व्यास पूर्णिमा, इसलिए हम लोग व्यास पूर्णिमा मनाएंगे, व्यास की पूजा करेंगे, क्योंकि व्यास पूर्णिमा में व्यास देव की पूजा होती है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ठीक है, व्यास पूर्णिमा बनाएंगे। तो सुभाष पंडित को सजाने के लिए सब बताया गया, सुभाष पंडित ने मंडप सजाया व्यास पूर्णिमा के लिए, व्यास पूजा के लिए। और व्यास पूर्णिमा के पूर्व दिन से अधिवास प्रारंभ हुआ और कीर्तन शुरू हुआ, अधिवास कीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और सारे भक्त लोग नृत्य कीर्तन कर रहे हैं सारा दिन, और उसी दिन रात में देर रात तक कीर्तन चला और कीर्तन जब बंद हो गया चैतन्य महाप्रभु अपने घर पर चले गए। नित्यानंद प्रभु सारी रात भावावेश में रहे, कृष्ण प्रेम में विवल होकर वो सोए नहीं, भावावेश में रहकर अचानक रात में उनका जो संन्यास दंड था उसको तोड़ दिया और जो कमंडल था जल का पात्र था उसको फेंक दिया घर से बाहर। तो इस प्रकार वो रात भर उन्होंने ऐसा किया। तो सुबह जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने देखा कि नित्यानंद प्रभु ने अपना संन्यास दंड तोड़ दिया है और अपने जल पात्र को फेंक दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों से कहा कि वस्तुतः नित्यानंद प्रभु के लिए संन्यास दंड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान है, ईश्वर है, इसलिए भौतिक जगत के जो वेद धर्म है, वर्णाश्रम धर्म, इसके अधीन यह नहीं है। इसलिए ठीक है, ये संन्यास दंड और जो जल पात्र है उसको लेकर गंगा में विसर्जित कर दिया। और उस वो दिन था व्यास पूजा का दिन, तो मंडप सजाया गया है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बैठे हैं, सारे भक्तगण बैठे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीवास पंडित से, उनको इशारा किया कि माला देने के लिए नित्यानंद प्रभु के हाथ में। तो श्रीवास पंडित ने एक माला लाकर दे दिया नित्यानंद प्रभु के हाथ में। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नित्यानंद अब वो माला व्यासदेव को अर्पित कीजिए, आज व्यास पूजा है, व्यासदेव को अर्पित कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु ने चारों ओर देखा और कुछ समय वो देखते रह गए चारों ओर, वो माला नहीं दे रहे इसको। और चारों ओर देखते देखते वो धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु के पास आए और उस माला को चैतन्य महाप्रभु के गले में डाल दिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस भगवान कृष्ण हैं और जगत गुरु हैं। तो वस्तुतः वही व्यासदेव के भी गुरु हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने ठीक ही किया, चैतन्य महाप्रभु को जब उनकी गले में माला डाल दिया तो सारे भक्त लोग हरी बोल ध्वनि करने लगे। तो सारे भक्त लोग सब प्रसन्न होकर इस प्रकार हरी बोल ध्वनि करने लगे। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने अपने षड्भुज रूप का दर्शन नित्यानंद प्रभु को कराया और नित्यानंद प्रभु ने जब चैतन्य महाप्रभु के षड्भुज रूप का दर्शन किया तो वो भाव विहोल होकर वहां नीचे गिर गए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने को अपना षड्भुज रूप को अंतरित किया और नित्यानंद प्रभु से कहा कि नित्यानंद हम जो इस संसार में आए हैं नाम प्रेम का वितरण करने के लिए, उस नाम प्रेम के भंडार रक्षक तुम ही हो और तुम्हारे माध्यम से ये नाम प्रेम का वितरण होगा। और जब तक तुम किस पर कृपा नहीं करोगे तब तक वो व्यक्ति मेरी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना असंभव है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को मानता है किंतु नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता है, या कोई नित्यानंद प्रभु को मानता है चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता है। तो ये दो प्रकार के लोग ये पासंड कहलाते हैं। एक को मानना और एक को नहीं मानना, ये अर्ध कुक्कुटी न्याय जैसा है। जैसे आधा मानना आधा नहीं मानना, तो नित्याय और चैतन्य महाप्रभु ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, जिस प्रकार कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। एक ही स्वरूप दो हैं, भिन्न मात्र काय। कृष्ण बलराम और गौर नित्याय एक ही स्वरूप है, किंतु उनके शरीर भिन्न भिन्न है। तो जिस प्रकार बलराम जी भगवान कृष्ण की लीला में सहायक हैं, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन लीला में वो सहायक है, सहायक के रूप में आविर्भूत हुए। इसलिए आज इस अवसर पर नित्यानंद प्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं, थोड़े समय में सब कुछ कहना संभव नहीं है। इसलिए चैतन्य नित्यानंद प्रभु की लीला को हम यहीं विश्राम देते हैं, क्योंकि अब अभिषेक भी आरंभ होने वाला है भगवान का। तो आज इस अवसर पर हम श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपनी विनीत प्रणति निवेदन करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार वो परम उदार होकर कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं, श्री नित्यानंद प्रभु कृपा करके हमें इस कृष्ण प्रेम का थोड़ा सा अंश, एक बिंदु भी हमें प्रदान करें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जय श्री नित्यानंद प्रभु की, जय श्री चैतन्य महाप्रभु की, जय श्री गौर नित्याय की, जय श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखादेवी की, जय श्री प्रभुपाद महाराज की, जय गौर भक्त वृंद की, नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम।